ओम शांति। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद, उसमें एक कहानी का वर्णन है जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष, जिसमें एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। उस त्रिकूट पर्वत के नीचे एक बगीचा है और वहां एक सरोवर है, और वो जो गजेंद्र है, गजराज, सभी हाथियों का राजा, अपने परिवार सहित वहां रहता है। तो वो जो गजेंद्र है, वो जो गजराज है, वो जो गज है, वो जो हाथी है, एलिफेंट, वो अपने परिवार के साथ बहुत सुखी है। और एक दिन उस सरोवर में जाता है क्रीड़ा करने के लिए, स्नान करने के लिए। और जब वहां स्नान कर रहा होता है तो अचानक एक घड़ियाल, एक ग्राह, एक क्रोकोडाइल आकर उसका पैर पकड़ लेता है। वो जो ग्राह है उसका पैर पकड़ लेता है जोर से। वो चिल्लाता है, पुकारता है गज, तो उसके जो उसकी पत्नी, उसके बच्चे जो किनारे पर है, वो उसे मदद करने की कोशिश करते, परंतु वो घड़ियाल उसे सरोवर के बीचों बीच ले जाता है और अपने दांतों से उसे खाने लगता है। जो घड़ियाल होता है, क्रोकोडाइल, उसके 80 दांत होते हैं, 50 बार दांत बदली होते जीवन काल में, 50 बार अपने दांतों को बदलता है। उसकी उम्र होती है लगभग 35 से 75 वर्ष तक। उसके दांत बड़े तेज होते हैं, वो दांतों से ही शिकार करता है। तो वो जो घड़ियाल होता है वो उसको बीचों बीच ले जाता है और वहां पर उसे खाने की कोशिश करता है। और वो जो गज पुकारता है, आर्त पुकार करता है, कोई भी उसकी मदद नहीं करते। और जब उसके परिवार वाले देखते हैं अब कुछ नहीं हो सकता है, वो उसे छोड़कर चले जाते हैं, और तब कोई भी सहारा नहीं रहता है। और ऐसे समय पर वो पुकारता है भगवान को, विष्णु को, नारायण को, और वो आवाज सीधा वैकुंठ लोक तक पहुंचती है। और वहां से विष्णु जी अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते हैं इसकी मदद के लिए। पीछे से वो गरुड़ भागते भागते, गरुड़ को भी नहीं लिया और वो सुदर्शन चक्र भी नहीं लिया, वैसे ही भागे और वहां पहुंचते हैं। तो तब तक ये जो गज, ये हाथी होता है, एक कमल का पुष्प लेता है और अपनी सूंड में रखकर ऊपर ऐसे दिखाता है, अर्पण कर देता है कि अब मैं संपूर्ण समर्पण कर रहा हूं, सारी कोशिशें कर ली, सारे प्रयत्न कर लिए स्वयं को बचाने के लिए, नहीं बच पा रहा हूं, अब तू ही एक सहारा है, एक तू ही आधार है, तू ही सर्वस्व है। और ऐसी जब उसका समर्पण होता है, जब उसका अहम संपूर्ण तिरोहित हो जाता है, तब भगवान आते हैं और अपना सुदर्शन चक्र विष्णु निकालते हैं और डिकैपिटेशन, वो जो घड़ियाल होता है, क्रोकोडाइल होता है, उसका गला काट देते, मगरमच्छ का, उस ग्राह का। इस कहानी को कहा गया है गजेंद्र मोक्ष कथा, भागवत के आठवें स्कंद में। 12 स्कंदों में आठवां स्कंद जो है उसमें यह कहानी आती है। सुबह की साकार मुरली, बाबा ने कहा तुम यहां सत के संग में रहते हो, यहां बाप है, तुम यहां सत के संग में रहते हो, बाहर जाते ही कुसंग है, माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हप कर लेता है, गज को क्या कर लेता है, ग्राह हप कर लेता है। शास्त्रवादी कहते हैं ये जो त्रिकूट पर्वत और ये जो सरोवर है, ये संसार है सरोवर, और वो जो गज है वो जीवात्मा है, और ये जो ग्राह है वो पाप है, वो माया है, वो देहभान है, वो रावण है, वो विकार है, वो पातक है, सिन है। तो जब पाप जीवात्मा को पकड़ लेती है और जीवात्मा ये समझता है कि मेरे साथी मेरी मदद करेंगे, तब तक वो भ्रम में रहता है, इल्यूजन, डार्कनेस, अज्ञान, अंधकार में। और जब सारी आशाएं निराश हो जाता है, सब तरफ से कोई मदद करने नहीं आता है, और तब हृदय से आर्त पुकार निकलती है, तुम मेरी राखो लाज हरी, बस तुम ही सब कुछ हो, तब भगवान आते हैं और उस ग्राह से, उस मगरमच्छ से, उस घड़ियाल से, उस क्रोकोडाइल से, उस एलिगेटर से, उस चेतना की मदद करते हैं। ये भी दिखाया है, ये दोनों ही शापित है पिछले जन्म के शास्त्रों में। कमाल है उनकी जिन्होंने ये शास्त्र लिखे, हम ही थे वो शायद जो इतनी रोचक कथाएं लिखी। वो जो क्रोकोडाइल था, या पहले जो हाथी था, वो किसी जन्म में राजा था एक, और अगस्त मुनि आए तो वो अपने स्थान से उठा ही नहीं, सम्मान ही नहीं दिया, शाप दे दिया, जाकर हाथी बन जाओ। तो उसने कहा कोई मार्ग? तो कहता है जब तुम अपना अहंकार छोड़ोगे तब भगवान ही खुद आएंगे और तुमको मुक्त करेंगे। ये तो एक कहानी है। दूसरी तरफ एक गंधर्व हुहू जिसका नाम रहता है, हुनु या हुहू, वो जो होता है वो कौन सा ऋषि, देवल ऋषि के साथ स्नान करने जाता है, उसको थोड़ी सी मजाक सूझती है, वो नीचे पानी के घुसते हुए उसका पैर पकड़ लेता है और खींचता है। तो कहता है तुमने मेरा पैर पकड़ा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं ऐसे ही पानी में रह के पैर पकड़ते रहना। और वो मगरमच्छ बन जाता है। वो कहता है त्राही माम थोड़ी क्षमा कर दो, मदद करो। वो कहता है जब भगवान आएंगे और तुमको अपने उसका चक्र जब तुम्हें स्पर्श होगा तब तुम मुक्ति को प्राप्त होंगे। कई सारी प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। एक है सात स्वरूप मुक्ति या उस स्वरूप को प्राप्त हो जाना। अलग अलग प्रकार की मुक्तियों में एक मुक्ति यहां गज को प्राप्त हुई। तो जब आत्मा क्या रियलाइज करती है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, एक तुम ही सहारा हो, एक तुम ही आधार हो, तुम्हारे सिवा कोई कुछ कोई नहीं है, जब ऐसा निश्चय हो जाता है उसको, तब कहीं जाकर भगवान की मदद होती हो। और तब कहीं जाकर जिस ग्राह ने पकड़ के रखा है उससे क्या होती है, उससे छुटकारा होता है। नहीं तो ये ग्राह पकड़ के रखता है, अच्छे अच्छे महारथियों को खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे कोई भी हो। अच्छे अच्छे सेंटर पर रहने वाले अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्रिमिनल आए हैं। आज की मुरली में क्रिमिनलिटी के बारे में बाबा ने वर्णन किया, क्रिमिनल आंखें, क्रिमिनल मुख, क्रिमिनल कान, क्रोध, क्या कर देता है क्रोध, सत्यानाश, अपना अहंकार रहता है, फंक नहीं होना है। बाप अगर शिक्षा दे तो धारणा के लिए मुख्य सार नंबर दो, फंक नहीं होना है। तो जब आत्मा इस तरह समर्पित हो जाती है, जब आत्मा इस तरह निश्चय बुद्धि हो जाती है, जब आत्मा इस तरह स्वयं को अर्पित कर देती है कि सबसे मदद मांग ली, सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हुआ, अब सर्जन से अपनी बीमारी को छिपाना नहीं है, सुबह की साकार मुरली उसे पूरा पूरा बता दो कि सारे डॉक्टरों की दवाई ले ली कोई काम नहीं आई, इलाज नहीं हो रहा है, बीमारी लाइलाज है, यामि गुरु भव भय वैद्यम अद्वय तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम यामि गुरु भव भय वैद्यम। हे गुरु, जो भव भय का, भव अर्थात ये जीवन मरण का जो चक्र है, ये जो सागर है, कुछ लोग कहते हैं कथाओं में ये जो नाव, ये जो तालाब दिखाया सरोवर, ये जन्म मृत्यु का है और इससे मुक्ति के लिए ये कहानी है गजेंद्र मोक्ष की। मोक्ष अर्थात जन्म मरण से ही वो मुक्त होता है, ऐसा वहां दिखाया है। इसके लिए सहारा एक ही है, इसके लिए निश्चय एक ही पर, इसके लिए एक बाप एक भरोसा, इसके लिए एक बल, एक की याद, एक से प्यार, एक की लगन, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक ही सब कुछ। यह निश्चय, निश्चय की दो परिभाषाएं दी है आज के वरदान में। मंजू बहन कौन सी?
एक आत्मा
हूँ नहीं, बाप जैसा है वो नहीं, नहीं। मैं जो हूं जैसा हूं उस पे निश्चय, और बाप का जो पार्ट है जैसा पार्ट है उसमें निश्चय, यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। ये ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है निश्चय, ब्राह्मण जीवन के संपूर्ण संपन्नता का ये फाउंडेशन है, ये निश्चय। भक्ति में इसको बहुत महत्व दिया है, संपूर्ण समर्पण को, अर्पित कर दो स्वयं को उसके आगे, तब वो मदद करता है, नहीं तो नहीं। जब तक वो, जब तक द्रौपदी इसको उसको उसको पुकार रही थी, जब तक द्रौपदी इसको उसकी आश लगाए बैठी थी, ये मेरी मदद करेगा, वो भीष्म मेरी मदद करेगा, विदुर मेरी मदद करेगा, धृतराष्ट्र मेरी मदद करेगा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य मेरी मदद करेंगे, किसी ने मदद नहीं की। पांच पति तो पहले ही हार चुके थे, उनसे आशाएं कम थी। तब उसने उसको पुकारा और तब वो आया। तो वो आता भी तब है जब ऐसी अनडिवाइडेड आर्त पुकार हो, समग्रता से इंटीग्रेटेड पुकार हो, तभी वो आता है, नहीं तो वो आता नहीं, ऐसे नहीं आएगा वो। जिस भगवान ने तुम्हें आसमान पर चढ़ा दिया आज की मुरली में, उसको तुमने क्या कर दिया? ठिककर पत्थर में डाल दिया, ठिककर बित्तर में डाल दिया, ऐसे थोड़ी आएगा वो, ऐसी ग्लानी करती उसकी। मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। तो भक्ति में भी बहुत गायन है। चंदा में तुम ही हो, तुम ही चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुमसे, सब कुछ तुम ही कर रहे हो। ये गगन है मगन तुम ही हो, दिए हो इसमें तारे, भगवान ये जीवन तुम ना सवारो तो और कोई सवारे, ओ पालनहारे ओ निर्गुण और न्यारे। आज की मुरली में है, मैं हूं चैतन्य निराकार फूल। बाप तुम फूलों को यहां देखते हैं और फिर बगीचे में जाकर उन फूलों को देखते हैं, बाप तुम फूलों को यहां देखते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उस फूलों, उस बगीचे में जाकर क्या देखते हैं? किस्म किस्म के फूल देखते हैं। तुम बिन हमरा कोनो नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान। भक्ति में भी संसार में भी अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं जहां पर समर्पण का भाव है कि तुम्हारे अतिरिक्त ये उलझन कोई नहीं सुलझा सकता, बेबूझ पहेली है। ये जंगल कौन सा है? उलझन का जंगल। संडे की अव्यक्त वाणी कैसे पहुंच गए? सीधा मार्ग, सरल मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग छोड़कर तुमने क्या कर दिया? कौन से रास्ते ले लिए? चार रास्ते ले लिए। कमजोर संकल्प का रास्ता, व्यर्थ संकल्प का रास्ता, आकर्षण और अहंकार, देह के अहंकार वश का रास्ता, ये रास्ता ले लिए और उलझन के जंगल में पहुंच गए। जिस जंगल में कांटे हैं कौन से, क्या, क्यों, कैसे, पुराने संस्कार, ये चार कांटे हैं। और फिर वहां जाके क्या करते हो? चिल्लाते हो। क्या चिल्लाते हो? बाबा बचाओ बचाओ, बाप कहते हैं तुमने रास्ता छोड़ा ही क्यों? किसने बोला था गलियों में जाने के लिए जब हाईवे में चल रहे होते थे? तो वो गज कौन है? मैं। वो तालाब कौन सा है? ये संसार। और वो ग्रह कौन है? वो ग्रह कौन है? पांचवी का नहीं। तो आज हम इस ग्रह की चर्चा करेंगे। ब्राह्मण जीवन में वो कौन से ग्रह है जिसने मुझ गज को, टांग को पकड़ा हुआ है? और हम क्या करें, कैसे इस गज को खत्म करें, इस ग्रह को खत्म करें? गज तो हम है, इस ग्रह को कैसे खत्म करें? उस ग्रह का नाम शास्त्रों में दिखा है मकर, मकर। और इसका नाम दिखा है गज का, गजेंद्र। तो ये गजेंद्र और ग्रह, ये गज और ग्रह की कहानी है। ये कहानी है दिए तूफान की, ये कहानी है गज और ग्रह की। ऐसे 14 प्रकार के ग्रह और उनसे मुक्ति के क्या मार्ग है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और इसके लिए आधार एक ही है, उसका सहारा।
ओ पालनहारे निर्गुण ओ नारे
बड़ा ग्रह है। सबसे पहले नंबर का काम, सबसे पहला कौन सा है? काम। सुबह की मुरली बाबा ने करा सबसे ज्यादा क्रिमिनलाइज। गायन ही है क्रिमिनलाइड और सिविलाइड, सबसे ज्यादा गिराने वाला। क्या है? काम। सारी सृष्टि गिर चुकी है, इस काम ने ही गिराया है। सारा संसार वेश्यालय बन गया है, इस काम ने ही बनाया है। ऐसे वेश्यालय से तुम्हें दिल हट जानी चाहिए, नफरत आनी चाहिए। जब तक शरीर की याद है, क्या जब तक शरीर की याद है आज की मूर्ति में मुरली में ढूंढना, जब तक शरीर की याद है तब तक क्या? तो इस सृष्टि को गिराने वाला सबसे बड़ा विकार, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ा एलॉय, सबसे बड़ी दलदल, सबसे बड़ा शाप, सबसे बड़ा खाई, सबसे बड़ी बोलते जो सबसे बड़ा काटा, सबसे बड़ी आग, सबसे बड़ा दुश्मन बोल दिया, सबसे बड़ा सबसे बड़ी फागी, सबसे बड़ी फागी जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसमें मन आसक्त हो गया उसके अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वही दिखाई देता है बस, उसी में सारे गुण दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी फागी, सबसे बड़ा नर्क, सबसे बड़ी खुजली, सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा प्रिजन, जेल, कारागार। तो सबसे बड़ा विघ्न, इससे बड़ा और कोई विघ्न नहीं है। सबसे बड़ा अजगर, सबसे बड़ा चोर, वायरस, ये काम है। सबसे बड़ा तूफान, इससे बड़ा कोई तूफान नहीं। सबसे बड़ी हलचल, दलदल बोल दिया। सबसे बड़ा हैकर, तो सबसे बड़ा ग्रह जो ग्राह जो है वो है काम। इसको समझना है कि कब आक्रमण करता है, इसके रूप क्या है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपनी जांच करें, कौन बच्चा है आज के मुरली में है, अपनी ही खुद की जांच करो कि कहां कहां क्रिमिनल आय होती है, क्रिमिनल आय के रूप क्या है, क्रिमिनल आय के स्वरूप क्या है, कौन खींचता है आंखों को, क्या आंखें देखना चाहती है, किसको देखना चाहती है, क्या देखना चाहती है। सबसे बड़ा ग्रह तो यही है जिसने गज को पकड़ रखा है और छोड़ नहीं रहा है, खून हो निकल रहा है और मदद करने वाले दूर बैठे हैं किनारे पर, कुछ नहीं कर रहे। और विधि क्या है? चक्र, स्वयं के स्वरूप का चक्र घुमाना है तो ही इसको काटा जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा अंधकार है काम, सबसे बड़ी जंग है काम, रस्ट, सबसे बड़ा बंधन है काम। ये जितनी पॉइंट सुनाई, अगर इतनी मन में एक बार भी रिवाइज कर लो तो वैराग आ जाए काम से। खुशी को नष्ट करने वाला आज की मुरली में है। तुम वहां चल रहे हो शिवालय में, वहां विष नहीं है, सबसे बड़ा विष है काम, पॉइजन, सबसे बड़ी आग जलाता है, ब्लैक होल सक कर लेता है, खींच लेता है, सबसे बड़ी बीमारी, व्याधि, पीड़ा, दर्द, काम, सबसे बड़ा पातक, पाप, काम, सबसे बड़ा विकर्म, कुकर्म, पाप कर्म, काम, सबसे बड़ा एक्सीडेंट, हड़गुड़ टूट जाती है, सबसे बड़ा अपघात, आघात, कुठाराघात काम, सबसे बड़ा डिसेप्शन धोखा काम, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी अवज्ञा, सबसे बड़ी अवज्ञा। और काम बड़ा सूक्ष्म है, और ब्राह्मण आत्मा जितनी जितनी आगे बढ़ती जाती है काम अपना सूक्ष्म रूप प्रकट करते जाता है। कामना भी काम का अंश है, ये कामना कि ये मुझे कुछ दे, मुझे स्तुति दे, प्रशंसा दे, प्रेम दे, केयर दे, अटेंशन दे, सिंपति दे, हॉस्पिटैलिटी दे, मेरी खातरी करे, हम जब आए तो मेहमान नवाजी हो, कोई हमको पूछे, कम से कम दरवाजे पर फूल तो लेके खड़े रहे। हम मधुबन से जा रहे, गए तो कोई दिखाई नहीं, और अंदर जाके कहते हम अपना ही है, आपका इंतजार कर रहे थे, आसार तो कुछ भी नजर नहीं आ रहे इंतजार के। ज्ञान उठा नहीं सकते, ढूंढ लिया आपने जो शरीर को देखते हैं वो ज्ञान उठा नहीं सकते। कितनी बड़ी बात बोल दी बाबा ने, ज्ञान कोई नहीं उठा सकते, ये ज्ञान है उठा नहीं सकते, इतना भारी है ये बड़े बड़े आके चले गए, हाथ भी नहीं उठा भी नहीं पाए धनुष को, शिव का धनुष, पिनाक धनुष। सबसे बड़ा क्या है, ग्राह है ये काम, और इससे स्वयं को मुक्त होने के लिए इस चक्र को घुमाना है, जोर से घुमाना है और दिन रात घुमाना है। आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, बस इसी चक्र को घुमाते रहो तो ये जन्म जन्म का जो देह भान है ये टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। दूसरा ग्रज है विश्राम, पहला काम, दूसरा विश्राम, आराम पसंद जीवन, विश्राम करना। ये विश्राम का समय नहीं है, ये सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो, बहादुरी से माया का सामना करो। आवाज उठ रही है आबू के पर्वत से, भारत का बदलना है तुम्हें नक्श कर्म से, अब स्वर्ग बनाना है भारत की भूमि को, ये सोचने का वक्त नहीं, नींद ना करो, बहादुरी से माया का सामना करो। विश्राम गज है, आत्मा विश्राम करना चाहती है, कौन सा विश्राम, आलस अलबेलापन विश्राम है, गफलत विश्राम है, डिजिटल स्लीप, डिजिटल मगर, एक है डिजिटल, ये मगर के प्रकार है, ऑर्बिटल मगर, डिजिटल मगर, पॉलिटिकल मगर कैपिटल मगर, सब अलग अलग मगर है, खींचते आत्मा को फाइनेंशियल मॉनिटरी मगर, अगर मगर इफ बट, ये भी मगर है, ये भी मगर के ही प्रकार है। एक है मगर, मगर मगर का पहला प्रकार है मगर, ये कर तो सकता हूं मगर, त्यज अगर मगर आ जाओ इधर राजयोग की बाहों में, बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम सवात प्रभात में लाया हूं। तो दूसरा है विश्राम, बहुत विश्राम कर लिया, बहुत आराम कर लिया माया की गोद में, अब जागने का समय, अब उठना है। आज की मुरली में पुरुषार्थ के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही है, पुरुषार्थ अर्थात कौन पढ़ के आया, पुरुषार्थ अर्थात, पुरुषार्थ अर्थात विजय माला में आना, यही पुरुषार्थ है, यह पुरुषार्थ की परिभाषा है। विजय माला में आना अर्थात कितना बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो 108 में आने की माला में आने का पुरुषार्थ करना है, छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, दिन रात जागने का पुरुषार्थ है, यहां एक पल की भी झपकी, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, सदियों ने, लम्हों ने गलती की और सजा सदियों ने पाई, जन्म 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 जन्मांतर की कमाई चट हो गई। तो आराम अब करना नहीं है, यहां पे कौन सा चक्र घुमाना है, टाइम मैनेजमेंट का चक्र घुमाना है। ब्राह्मण जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, एक मोमेंट भी वेस्ट ना जाए, ज्ञान योग और सेवा इसके अतिरिक्त, इधर की बातें, वो बात, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यहां जाऊं वहां जाऊं, सब वेस्ट है, ये खाऊं, ये भी क्रिमिनल आंखें, क्रिमिनल मुख, क्रिमिनल कान, क्रिमिनल नाक, नाक भी क्रिमिनल, ये सुगंध, इसका सुगंध लू, उसका सुगंध लू, परफ्यूम, डिओड्रेंट, सेंट, दूसरा विश्राम, तीसरा नाम, काम, विश्राम, नाम, मान, शान, सेवा की पता होना चाहिए आपको कि हमने सेवा की, हमारे सेवा केंद्र ने सेवा की, हमने ये सेवा की, हमारा नाम होना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी नाम होने से नहीं चलेगा, हमारा नाम चाहिए उसमें, हमारा नाम होना चाहिए, हर चीज में हमारा नाम दिखना चाहिए, नाम के लिए सेवा। तो नाम मान के लिए सेवा, शान के लिए सेवा, हमारी शान बढ़ गई, शान बढ़ जाए, ये सेवा का उद्देश्य ना हो, दिखावा ना हो उसमें, ढोंग ना हो, ऐसी सेवा फल नहीं देती। इंटेंट क्या है सेवा का, किस इंटेंशन से की जाए। एक बहन यहां पर आए थे कभी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी इस संगठन के लिए और विशेष सुशील भाई के लिए। उन्होंने कहा था ये छोटी सी जगह है, इतना छोटा सा स्थान है, पर यहां की आवाज पूरे विश्व में कैसे चली गई। यहां चार लोग रहते थे हम लोग, सुशील भाई कितने लोग रहते थे, तीन चार लोग बैठते थे यहां बस, ये रिकॉर्डिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, रिकॉर्डिंग तो थी ही नहीं कितने समय। फिर एक दिन सुशील भाई को सूझा रिकॉर्डिंग करो, तो यहां मोबाइल रखना चालू किया, फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप आया एक दिन, और फिर एक ग्रुप बना, फिर उसमें एक बार डाला, और फिर अभी कितने बन गए, कितने 20 बना दिए। तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, यहां तो बस बैठो और मुरली डिस्कशन चालू संडे की, या दूसरी कोई भी ज्ञान चर्चा। उस बहन ने कहा यहां की आवाज विश्व में गई क्योंकि इसका जो इंटेंशन था बहुत प्योर था, इसका जो इंटेंशन था स्व की उन्नति और आत्माओं की उन्नति करना था, इसलिए इसमें बहुत पावर थी। तो सेवाएं कैसी हो सुशील भाई, 20 ग्रुप वाली, नाम शहीद, नाम मान शान रहित। उसके बाद में चौथा दाम, दाम अर्थात मनी। हमारे जीवन में कई ब्राह्मण आत्माओं को पैसों ने पकड़ रखा है, दाम ने पकड़ रखा है, सोचते हैं बाबा की सेवा के लिए कमाए, और वो कमाते कमाते बाबा की याद है ही नहीं, बाबा ही भूला हुआ है, योग है ही नहीं, दिन रात उसी में लगे हुए पैसों कमाने में। वही बहुत बड़ा ग्राह है उनके जीवन में, जिसको ग्राह ने पकड़ रखा है। 4 घंटा ट्रैवलिंग, 8 घंटा ड्यूटी, अमृत वेला कहां से होगा, ज्ञान शाम का कहां से होगा, मुरली कब पढ़ेंगे, कार चलाते चलाते मुरली सुन लेते हैं और संतुष्ट है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, अमृत वेला थोड़ा बहुत उठ लिया, कभी 4 बजे, कभी 4:15, कभी 4:30, कभी नहीं, सीधा 5 बजे उठने के बाद सेवा, अमृत वेला रहित सेवा, सेवा माइनस अमृत वेला, ज्ञान मुक्त, योग मुक्त सेवा, और फिर डिस्टर्बेंस, और फिर संघर्ष, और फिर टकराव, फिर लड़ाई, फिर एक दूसरों से झगड़ा, लून पानी, और फिर ज्ञान एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। मनी माइंडेडनेस, पैसों के पीछे पागल है, नीड को ग्रीड बना रखा है, अपनी ग्रीड को नीड का नाम दे रहे हैं, वो है ग्रीड, लोभ, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। कई सारे भाई बहने मिलते हैं, वो कहते हैं हमको पुरुषार्थ बहुत करना है, परंतु वो सारा जो है बिल्कुल छोड़ना नहीं है उसको, अभी सोच रहे कहीं और अच्छा जॉब मिल रहा है, पर उसमें थोड़ा एक घंटा ज्यादा काम करना है। जब आते हैं घर तो इतने थके हुए होते हैं, कहां से नुआ शाम का योग, कहां से मुरली चिंतन, कहां से क्लास, खुश है कार चलाते चलाते क्लास सुन लेते हैं खत, ये सब भ्रम है। ये समय कौन सा है? विस्तार का नहीं, सार का समय है। सेवाएं भी सेवाओं से अधिक महत्वपूर्ण पवित्रता है। प्यूरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस, ये भूल रहे हैं। इसके लिए सर्विस के विस्तार में इतना जा रहा है कि वहां फैमिलियरिटी बढ़ रही है, दोस्ती हो रही है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की। और नाम सेवा, ऐसी सेवा कभी सफल भी नहीं होगी जिसका फाउंडेशन ही फैमिलियरिटी है, जिसका फाउंडेशन ही टकराव है संस्कारों का, जिसका फाउंडेशन लगाव है, जिसका फाउंडेशन नाम मान शान है, हमने किया दिखावा है। चौथा दाम, उसके बाद में पांचवा बेलगाम अर्थात असंयम। असंयम के ग्राह ने पकड़ रखा है, जीवन में संयम ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है किसी बात में, ना खाने में कंट्रोल है, अभी अभी नाश्ता हुआ फिर कुछ खाने को चाहिए, अभी अभी भोजन हुआ फिर कुछ खाने को चाहिए, दिन रात भोजन का ही चिंतन है, शरीर का कोई संयम ही नहीं, नींद ही नींद, नींद का प्रकोप, अमृत वेला होते ही नींद चाहिए, मुरली होते ही थोड़ी सी सेवा की फिर नींद चाहिए, अमृत वेला नींद करते वो अलग, नींद ही नींद, संयम का अभाव। बोलने बोलना, कुछ दिनों पहले वरदान था गंभीरता का, एक खाद दो मास हो गए उसमें बोलने के लिए बाबा ने कहा था संयम, बोले ही जा रहे बोले ही जा रहे, वर्बल डायरिया ओरल डायरिया, बोलना ही बोलना, बोलना ही फूलना, बोलना ही बोलना, बोलना ही फूलना, कोई उसको संयम ही नहीं है, बेलगाम। यह भी ग्रह है बेलगाम। अगला है प्रमाण, प्रमाण हर चीज का प्रमाण चाहिए, अर्थात हर चीज में संशय है, हर चीज में संशय उठता है, प्रूफ चाहिए, हमको प्रूफ बताओ, ऐसा करेंगे तो बाबा मदद करेगा ना, प्रूफ हर चीज में वरदान है आज का, निश्चय के ऊपर, मैं जो हूं जैसा हूं अपने ऊपर निश्चय, बाबा जो है जैसा उसका पाठ चालू है उस पर निश्चय, इस ड्रामा में निश्चय, इस ज्ञान में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, इस समय में निश्चय, अपने भाग्य में निश्चय, केवल वो चार प्रकार के निश्चय नहीं, निश्चय ढेर सारे प्रकार के है, बाबा में निश्चय पर उसके ज्ञान में निश्चय है क्या, ज्ञान में निश्चय परंतु ड्रामा में निश्चय है कि ड्रामा का हर सीन मेरे लिए कल्याणकारी है, कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अकल्याणकारी है, इसमें जरूर कोई कल्याण छिपा है और इस ड्रामा में जरा भी अन्याय नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वैसा ही होना चाहिए, एकदम परफेक्ट सत्य है ड्रामा, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है इधर, यह बहुत ऊंची अवस्था है निश्चय की जिसमें जरा भी हलचल नहीं है। प्रमाण, उसके बाद में इसको कैसे काटना है, चक्र से, निश्चय के चक्र से। उसके बाद है संग्राम, सारा जीवन लड़ाई झगड़े में गुजर रहा है, रिश्तों में कड़वाहट है, मधुरता नहीं है, इसकी उसके नहीं बनती, उसकी भाई के साथ नहीं बनती, भाई की बहन के साथ नहीं बनती, उसकी इंचार्ज के साथ नहीं बनती, जूनियर के साथ नहीं बनती, कन्या के साथ नहीं बनती, दो लोग एक ही जगह रहते हैं परंतु इटर्नल मौन, सनातन मौन धारण किए हुए क्योंकि बनती ही नहीं है, जब भी बोलने जाते हैं तो झगड़ा ही होता है, जब भी सुलह करने जाते हैं परिणाम झगड़ा, जब भी बोलने जाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी अवस्था है। ये ग्रह है जिसने पकड़ के रखा है, इसको कैसे सुलझाएंगे? दो व्यक्तियों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, दो व्यक्तियों में झगड़ा चल रहा है, दो व्यक्ति बात ही नहीं करते, क्या करिए? क्या मिले और जब जब मिले हैं ठीक करने के लिए झगड़ा और बढ़ गया, किसी तीसरे को लाया तो वो अपना मतलब से अपना फायदा निकालता है उसमें से निकल के चला गया और ही दादा धोखा हो गया, उसे तो हम ही ठीक थे दोनों। मनसा में एक दूसरे के प्रति घृणा है, बहुत सूक्ष्म तल पर काम करना है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बैठना, बहुत बैठ लिया, बहुत बात कर लिया, कुछ नहीं बोलो, केवल मनसा से उस आत्मा को सकाश दो, मनसा से उसे सच्चे दिल से माफ कर दो, बदले की जो भाव है वो खत्म कर दो अंदर से। क्योंकि हम भी ताक में बैठे, उसने मुझे ऐसा कहा था, अब गिरने दो उसको बीमार, मैं भी कुछ कहूंगा। क्योंकि हम जब बीमार पड़े थे तो बातों बातों में उसने ऐसा कुछ बोल दिया था जो अंदर चोट कर गया था। ये चोटें तो कुछ नहीं है, वो अंदर की चोट बहुत गहरी है, जबान की चोट बहुत गहरी होती है, वो लाठी जो होती है वो हड्डियां तोड़ती है, जबान की लाठी दिल तोड़ देता है। तो कितने हो गए? ये कौन सा था? संग्राम और बेलगाम। उसके बाद में है इल्जाम, इल्जाम, इल्जाम अर्थात ब्लेम गेम। आदत ही बन गई है कि जो कुछ हो गया है दूसरों पर ब्लेम करो, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से। इसको हटा दो, बाकी सब ठीक है। बाबा इसको ट्रांसफर कर दो यहां से, डिपार्टमेंट से, तो अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। अर्जी डाल दी, अब देखो आपकी इच्छा। इल्जाम। उसके बाद इंतकाम, इंतकाम अर्थात रिवेंज, बदला लेना। ये जब तक एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा जब तक बदला लेने की सूक्ष्म भावना ब्राह्मणों में से नहीं जाएगी कोई भी ब्राह्मण संपूर्ण नहीं बनेगा। मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि सभी ब्राह्मणों में बदला लेने की भावना है, एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि जिसमें बदले की भावना नहीं है, हर एक में है सूक्ष्म। और हम लोग बदला वैसा नहीं लेते जैसे संसार के लोग लेते, हमारे बदले भी बड़े रमनीक और रसीले और बड़े ही सूक्ष्म रीति से हम बदला लेते हैं। क्या दिल से, मन से, सच्चे दिल से सभी को माफ कर दिया है जिसने हमारे साथ सब कुछ किया है, या हमारी स्थिति भी द्रौपदी जैसी है, नहीं माफ करूंगी उसको, दुर्योधन को कभी भी माफ नहीं करूंगी, उसने तो बाल ही खुले करके रखे ताकि भूल ना जाऊं बदला। चाणक्य ने अपनी चोटी खोल के रखी है, ये धननंद को पदाक्रांत कर दूंगा एक दिन। हमारे अंदर ये काम हम नहीं कर सकते, संसार के लोग भले करें, हमको ये काम नहीं दिया है बाबा ने, हमें किसी से भी बदला नहीं लेना है, किसी से भी बदला नहीं लेना है। हाँ, वो तो कूटनीतिज्ञ है, कुछ भी कर सकता है, कूटनीतिज्ञ है, कुछ भी कर सकता है, वो पॉलिटिक्स है। परंतु इंतकाम, किसी से भी हमें बदला नहीं लेना है, क्योंकि उसकी यात्रा बहुत लंबी है, उसकी यात्रा बहुत, हम बदला लेंगे फिर वो बदला लेगा, फिर हम कुछ करेंगे वो कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही, भले हमारी अभी कोई गलती नहीं है, उसने ही सब कुछ किया है, पर हमने बदला लेने के बाद वो फिर से कुछ तो करेगा। अंतहीन यात्रा है बदला की, रिवेंज, ये हम नहीं ले सकते इंतकाम, ये हमारा काम नहीं। उसके बाद अपमान और उसके बाद अभिमान, ये दो अलग अलग है। किसी ने, बाबा ने कहा, अपमान की फीलिंग कब आती है? जब अंदर अभिमान हो, अभिमान। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, फंक नहीं हो जाना है, किसी ने शिक्षा दी, ले लो ना किसी से शिक्षा। हम रोज अपने टाइम पर ड्यूटी पर आते हैं, 10 साल से डेली एग्जैक्ट टाइम पर आ रहे, एक दिन लेट आए, और जिस दिन लेट आए किसी ने कहा यह हमेशा ही लेट आता है, इसकी तो आदत ही है। ये हमें भी पता है कि हमारी आदत नहीं है, पर फिर भी उसने कहा, और कहने का उद्देश्य प्योर इंटेंशन नहीं था, दुखाना था, दर्द पहुंचाना था, पीड़ा पहुंचाना था, बदला लेना था किसी एक अपमान की जो उसका हुआ होगा। इंटेंशन ही मैलिफाइड था, बहुत ही इम्प्योर था। तो क्या हम उसको प्रमाण देंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो हमेशा टाइम पे आते हैं, आज ही लेट हो गया। नहीं, पर वो अपनी बुराई में नहीं, बुराई को नहीं छोड़ता, हम अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे। वो जो करे करने दो, हम अपनी अच्छाई में स्थित रहेंगे। वो भ्रम है, बुराई का प्रभाव परिणाम कभी भी अच्छा ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अभी अपमान, अपमान, अपमान के जो घाव होते हैं अभी तक पकड़ के रखे हैं कि मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ। हमारी परमिशन के सिवा हमारा कोई अपमान कर नहीं सकता, इसको लिख के रखना है। विदाउट माय परमिशन नोबडी कैन इंसल्ट मी। कोई कैसे मेरा अपमान कर सकता है? कोई अपमान कर रहा है, उसके करने से थोड़ी ना होता है अपमान। उसने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं आगे अपमान हो गया? वो तो कुछ भी बोलेगा, किस किस के मुंह में ताले लगाएंगे। किसी के बोलने से हमारा अपमान नहीं हो सकता कभी। हम अपने समान में जब स्थित है तो अपमान कहां से होगा? अपमान इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्वीकार किया है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। कोई कहता है तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो, तो हम उसको कहेंगे अरे मैं नहीं हूं, प्रूव क्यों करना है? तो ये काम हमको नहीं करना है। तो अभिमान और अपमान, ये दो क्या है? ग्राह है, जो गजेंद्र को पकड़ के रखे। और इसको किससे कटना है? निमित्त भाव से, निरंकारिता से। एक वही सहारा, एक वही आधार। फिर उसके बाद में गुलाम, कोई भी चीज का गुलाम नहीं बन जाना। वो भी गुलामी जो है ग्रह की जरा है। कोई भी आदत गुलाम बना देती है। एक ही चीज को 10 बार करो, गुलाम बन जाएंगे। एक ही टेलीविजन प्रोग्राम 10 बार देखो, फिर बस वही देखने की इच्छा है। YouTube वीडियोस देखो, बस वही देखते रहेंगे, चिपके रहेंगे उसमें। इंटरनेट, बस उसी में लगे रहेंगे। सबसे बड़ी माया ये है वर्तमान। ज्ञान योग छूट गया, कब 3 घंटा चला गया पता ही नहीं चला। चालू कहां से किया था, एंड कहां हुआ? एक क्लिक ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार। कहां से कहां पहुंच गए? उसके बाद में लास्ट 2, धूमधाम। धूमधाम अर्थात दिखावा, धूमधाम अर्थात दिखावा करना, हर चीज का दिखावा। ऊंची दुकान, फीके पकवान। पकवान तो फीके पर दुकान बड़ी ऊंची है। दिखावा बहुत ज्यादा है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमारा वो भी है, हमारा वो भी है। ये तो कुछ भी नहीं, तुमको तो पता ही नहीं, अभी आए हो। हमारी महिमा तो तुमको बाद में बताएंगे। कब जानोगे हमको पता नहीं। कईयों का ये दुख होता है कि दूसरे मुझे नहीं पहचानते। एक दिन तुम जब मुझे जानोगे ना, तब दुख होगा तुमको, मुझे तुम जानते ही नहीं। एक दिन तुमको पता चलेगा मैं कौन हूं, तब रोना फिर। जैसे एक महिला थी, मेडिकल साइंस में ये जोक सुनाया जाता है, एक महिला थी जो सोचती थी मुझे बीमारी है, बहुत सारी बीमारी, हर डॉक्टर के पास जाती थी। कोई हर डॉक्टर अपनी जांच करता था, कुछ भी नहीं निकलता था। वो कहता है डॉक्टर ही खराब है, जाओ तुमको पता ही नहीं मुझे कितनी बीमारी है, और अलग अलग जगह पर जाती थी, सब डॉक्टर उससे परेशान थे और वो सब कहते थे तुम नॉर्मल हो, वो कहती थी बिल्कुल मेरे को बहुत बीमारी है, एक दिन दिखा दूंगी तुमको कि मुझे बीमारी है। और जब वो मर गई और उसकी जो कब्र बनी उसने वहां लगा दिया डॉक्टरों के लिए, देखा मैंने बोला था ना कि मुझे बीमारी है, तो जब भी डॉक्टरों देखते, आज तक भी उसकी आत्मा डॉक्टरों को छोड़ती नहीं, अभी तक उसको प्रताड़ित कर रही है कि देखा मैंने बोला था ना मुझे है बीमारी, तुम लोगों ने बोला था कुछ नहीं है। जाते जाते उसमें एक दूसरा भी जोक है अलग प्रकार का, जो कब्र में से वो व्यक्ति उठ के खड़ा होके कहता है डॉक्टर कम से कम अब तो बता दो मेरी बीमारी क्या थी। ये अलग प्रकार का है, पर ये एक भावना है हर कई व्यक्तियों की, वो ये समझते हैं कि दूसरे मुझे समझते नहीं है। हम ये क्यों कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे मुझे समझे, ये क्यों नहीं कोशिश कर रहे कि मैं उनको समझूं। अब ये जो भाव है इसको हटा दो कि दूसरे मुझे समझते नहीं, मुझे कितना दर्द है, कितना मैं सहन करती हूं, दूसरों को कब समझ में आएगा इनको, कितना मैं कैसे ये डिपार्टमेंट को चलाती हूं, चला रही हूं, सेंटर को स्टूडेंट्स को इतने विरोध का सामना करते हुए चल रही हूं, कब इनको मेरा महत्व समझेगा, मरने के बाद फिर रोना मेरे लिए, फिर नहीं आऊंगी। तो ये क्या है, इस दिखावे की बात चल रही थी धूमधाम। लास्ट हरिनाम या राम राम हरिनाम अर्थात भक्ति। ज्ञान में तो चल रहे हैं, पर ज्ञान के ओम शांति भवन के शिविर में भक्त छिपे बैठे रहते कहां कहां, हर सेंटर में भक्त छिपे बैठते हैं क्लास में, जो बाबा से बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बाबा ऐसा कर दो, वैसे भी भक्त होते और वैसे भी भक्त होते, सेंटर पर भी जाते हैं और बीच में हनुमान जी का मंदिर रहता लगता है उसमें भी थोड़ा फूल बिल चढ़ा के घर जाते हैं, कहीं नाराज ना हो जाए। माता है इधर सेंटर पर भी जाती है, जाते जाते गणेश जी का मंदिर लगता है, गणपति के मंदिर में थोड़ी पूजा वीजा करके भी आगे जाती है, कहीं नाराज ना हो जाए। ज्ञान में 10 साल से चल रहे, अभी भी घर में गणपति बैठता है हर साल, वो छोटा नहीं है अभी तक। भक्ति उधर भी, भक्ति और ज्ञान का अलौकिक बैलेंस, भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, एक तो ये भक्त है और दूसरे भक्त है मांगने वाले, बाबा कुछ दे दो, बाबा कमरे में जाना है बारिश नहीं होनी चाहिए, मैं पहुंचूं उसके बाद बारिश, बाबा आज बारिश नहीं होनी चाहिए, आज हमारा प्रोग्राम है। हमको याद है मुंबई में मेगा प्रोग्राम था, कौन सा साल अशोक भाई, 2007 या 8 या 9, 8 में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सुबह से बारिश चालू थी, इतनी बारिश सारे ब्राह्मण बैठ गए योग लगाने के लिए, कोई यहां बैठा कोई वहां बैठा, कमरे लिए हुए थे अलग अलग और सब लोग योग करने बैठ गए, बाबा बाबा बारिश रोक दो, शाम को इतना बड़ा मेगा प्रोग्राम है, पूरे महाराष्ट्र के लोग आने वाले थे बीके और आ चुके थे, प्रोग्राम बाहर वालों के लिए था, बीकेस के लिए नहीं था, बाहर वालों के लिए, पर बीकेस तो आ गए थे और सबका निश्चय था कि शाम तक बारिश बिल्कुल रुक जाएगी। एकदम तपस्वी ज्वालामुखी योग में बैठे थे, जहां देखो वहां योग योग योग, और जब शाम हुई बारिश और ही तेज हो गई और पूरा जो ग्राउंड था, कौन सा ग्राउंड था, बताओ शिवाजी कौन सा था ग्राउंड, कौन सा ग्राउंड था मुंबई का, वो ग्राउंड में स्टेज और जो लोग थे केवल बीके छाता लेके खड़े थे बस, और कोई भी नहीं था बाहर वाला का, प्रोग्राम बाहर वालों के लिए था, कितना खर्चा किया था, केवल बीके खड़े थे, कौन खड़े रहेगा छाता लेके बाहर वाले वो तो बीके से छाता ले लेके खड़े थे बस, प्रोग्राम पूरा हुआ बारिश चालू रही, बारिश रुकी ही नहीं, ड्रामा में यही होना था। इसके लिए मत कहना कि बाबा मैं ये कर रहा हूं तो वो हो जाए तो हमारा सेंटर बन जाए। दादी जान की गई थी लंदन, तो बहनों को पूछा क्या कर रहे हो, बहनों ने कहा नई जगह के लिए योग कर रहे, दादी ने कहा व्हाट अ टाइम वेस्ट, ये कोई कारण है योग करने का, ये तब की बात है 70s की, तब दादी ने ऐसा कहा था, इधर ही तो उस बहन ने सुनाया था जिसको कहा था। तो कुछ भी मांगना नहीं है, भक्ति नहीं करनी है, यहां पर यह ज्ञान का शिविर है। तो गज और ग्रह की यह कहानी है। तो चक्र घुमाते रहना है, सेल्फ रिलायंस का चक्र घुमाना है, खुद्दार बनना है, किसी को कुछ नहीं मांगेंगे, मर जाएंगे केवल मांगेंगे नहीं, ना पैसे मांगेंगे किसी से, ना भोजन मांगेंगे कि हमको टिफिन दो, हम अकेले हैं, हम कुमार हैं, हमको भोजन बनाने नहीं आता, हमको टिफिन भेजो। क्यों भेजे, तुम अपना बनाओ, वो अलग बात है। क्यों मांगे किसी से टोली, क्यों मांगे किसी से भोजन, क्यों मांगे किसी से पैसे, क्यों भी नहीं मांगना है किसी से, मांगने से मरना भला, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार। क्यों मांगे पैसे किसी से, क्यों मांगे किसी से डोनेशन, जिसको देना है भाग्य बनाना है बनाएगा, नहीं चाहिए, झोपड़ी रही तो चलेगा, रिट्रीट सेंटर नहीं चाहिए। क्यों मांगेंगे किसी से, कुछ भी नहीं मांगना है किसी से, जिसको देना है वो देगा, हम भिखारी थोड़ी ना है कि पैसे दो पैसे दो। तो ये कहानी है गज और ग्रह की। तो एक बाप ही सहारा है, उसी को सब कुछ बना देना है। ओम शांति।
जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो,
भक्ति को शक्ति दो,
जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हम जा